نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. لا تحزن، don't be sad. tension A to Z. اللہ تعالیٰ نے اس سیریز میں ہم سب کو ایک موقع دیا کہ ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کیا واقعی ہم دکھی ہیں، کیا واقعی ہم بدبخت ہیں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں خوشیاں نہیں لکھی. ابھی تک تو جتنا پڑھا ہے مجھے، اس میں سے تو ایک بھی چیز ایسی نہیں لگی کہ کسی نے ہم پہ جادو کیا ہو یا کسی نے ہمارے بارے میں کچھ پڑھ پڑھا کے باندھ دیا. کیونکہ عموماً ہمارے کلچر میں کسی کو ایک سے دو دفعہ کوئی تکلیف آ جائے تو کہتے ہیں میرا رزق باندھ دیا گیا، رشتے بن چکے ہیں، اور فلاں نے گریں لگا دی، جادو کر دیے، نظر لگا دی، حسد کر دیا. پتہ نہیں کہاں نظر لگے گی ہمیں. بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف اپنی ہی حرکتوں اور اپنے ہی کاموں کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں. اور قرآن پاک تو پہلے ہی کہتا ہے کہ وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. سورت شورا میں تو ہے اور بھی بہت جگہ یہی بات ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں. کوئی بھی جب مصیبت آپ کے میرے اوپر آتی ہے تو وہ ہمارا اپنا ہی کوئی عمل یا کوئی گناہ ہوتا ہے. تو اگر ٹینشن کو ہم ایک مصیبت سمجھے، غم کو، دکھ کو، حزن کو ہم ایک تکلیف کی کیفیت سمجھتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ کہیں نہ کہیں تو ہم خود ہی ہیں. اور یہ سیریز آپ کو مجھے یہی سکھا رہی ہے. ہر دن ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت شیئر کر رہے ہیں. پہلی ٹپ جو ہمیں قرآنی آیات میں سے ملی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہونا ہے، اگر اس طرح کا رہنا ہے تو وحی الہی سے تعلق جوڑنا پڑے گا. اور یہ پہلا پیغام تھا جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے پہلے مل گیا تھا کہ اب دنیا میں جاؤ گے، اگر ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہو تو اس کتاب اور سنت کو مان لو، کیونکہ وہی ہی کی صورت میں آج آپ کے میرے پاس زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ ہے. پھر دوسری آیت جو ہم نے لی تھی وہ تھی بلا من اسلم وجہہ للہ، اپنا آپ اللہ کے سپورٹ کر دینا، جس کو کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دینا، سرنڈر کر دینا، سر زمین پہ رکھ دینا، ناک کی لکیریں رگڑنا. کیا پتہ چلا؟ اللہ کے آگے جھکنا، سلامت رہنا اور اللہ تعالیٰ کے آگے پوری طرح سے مطیع و فرما بردار ہونا. پھر تیسری آیت جو ہم نے لی قرآن پاک میں سے وہ تھی اللہ کے راستے میں خرچ کی، کہ جب ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتا ہے، اور اس خرچ کے بعد جو تحفوں میں سے ایک تحفہ ملتا ہے وہ کیا تھا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر آپ ترتیب بھی دیکھیں نا، تبھی تک کی جتنی بھی آیتیں شیئر ہو چکی ہیں، آج کی اس آیت جو میں آپ سے بھی شیئر کرنے والی ہوں اس کے سمیت، یہ ساری کی ساری سورۃ البقرہ سے ہی ہیں. گویا کہ قرآن پاک کا آغاز ہی اس سوچ کے ساتھ ہوتا ہے کہ تم اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ جیو گے تو خوشی ملے گی. اور اگر آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو سورۃ البقرہ میں یہ پیغام کتنی دفعہ آیا، 1 2 3 4 5 6 آیتیں قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ایسی ہیں کہ جس میں خوشخبری ہے آپ کے میرے لیے کہ ولا خوفن علیہم ولا هم یحزنون. تو صرف سورۃ البقرہ پڑھنے تک، یعنی ڈھائی پارے بھی نہیں ہوئے، تقریباً سوا دو پاروں کے بیچ تک پہنچنے میں بندہ 6 دفعہ یہ بات سن لے کہ دیکھو خوف اور حزن نہیں ہوگا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آج ٹینشن میں اور ڈپریشن میں گئے ہوئے لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ گولیاں ہیں، وہ قرآن پاک کے خوبصورت نسخے ہوتے ہیں، یہ پرسکرپشنز ہیں کہ جس پہ عمل کرنے کے بعد وہ زندگی ہو جاتی ہے کہ جس کے اوپر خود ہی زندگی کو ناز ہونے لگے. لیکن چونکہ ہم تو پڑھتے ہیں اس کو کسی کے مرنے کے بعد راہداری کے طور پہ، کچھ لوگوں میں دیکھا گیا کہ میت گھر میں رکھی ہوتی ہے اور لوگ ارد گرد قرآن پاک جلدی سے جلدی پڑھنے کی کوشش میں ہیں، اور سورۃ البقرہ جتنی دفعہ پڑھی جائے کہتے ہیں راہداری کی، اتنی سورۃ بقرہ پڑھ دی، اب تو وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، اللہ اچھے حالوں میں رکھے. تو زندگی میں اگر آپ قرآن پاک کو کھول لیتے ہیں تو آپ کی زندگی حزن اور خوف سے پاک ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اعمال جس کی وجہ سے انسان بے خوف ہوتا ہے، اس میں سے اب آپ اگلا عمل لیجئے، کیونکہ اعمال کی یہ لسٹ بھی اینڈ پہ مرتب ہو جائے گی اس سیریز کے ساتھ ہی ساتھ. اور وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ 277 آیت ہے، نوٹ کیجئے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واتبوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے. تو آج کے اعمال میں سے عمل نمازوں کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ دونوں بنیادی ریچول ہیں. 5 پلرز آف اسلام میں یہ دونوں آتے ہیں. بڑی ہی معروف روایت ہے، بنج الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے اور ان میں سے ایک نماز ہے اور ایک زکوٰۃ ہے. اور یہ کسی درخت کو تصور میں لے آئیں تو درخت کا تنا ہے، یعنی جس تنے کے اوپر پھر بعد میں اتنا بوجھ پڑتا ہے ٹہنیوں اور پتوں اور پھلوں کا، اس کی بنیادوں میں نماز ہے. تو کیا پتہ چلا کہ آپ اور میں اگر ڈپریشن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، دل بلا وجہ اداس رہتا ہے، سیڈ فیلنگ آتی ہیں، تو ذرا سی اپنی نمازوں کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کیجئے. نہیں پڑھتے تھے تو آج سے پڑھنی شروع کر دیں. پڑھتے ہیں توجہ ہی نہیں ہوتی، کریں کیا، ہوش ہی نہیں، فکر نہیں، گولیاں کھاتے، دوائیاں کھائی ہوتی، پڑھتے رہیے. ہر چیز کو بہتر کرے. اگر سب کچھ ٹھیک کرتے تھے تو ذرا سا نئی صورت پڑھنی شروع کر دے، چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد کرنا شروع کر دیں کہ جو میں نے نماز میں پڑھنی ہے. انشاءاللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، دنیا میں ہی زندگی حزن اور غم سے پاک ہونے لگتی ہے. آزما کے دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے، کوئی فلم بنانے والا یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری اس 3 گھنٹے کی فلم کو دیکھنے کے بعد تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں آئے گا اور تم سیڈ نہیں رہو گے. کوئی بڑے سے بڑا کامیڈین بھی اپنے اسٹیج شو میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ آج میرا یہ اسٹیج شو دیکھو، ہنس ہنس کے اتنی تم کھل جاؤ گے کہ تمہیں پھر زندگی میں کبھی بھی خوف نہیں آئے گا. ایون جو کامیڈی فلمیں بھی دیکھتے ہیں، وہ 1-2 گھنٹے کی بھی ہو گئی تو اس کے اندر ہنس بول لیتے ہیں لوگ، بعد میں پھر اداس. یہ صرف اللہ کا کمال ہے. اور وہ خود کہتا ہے کہ الذی ہوا، وہ ذات ہے وہ جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور تمہیں رلاتا بھی ہے. تو اللہ سے دعا کر کے ہم آج کی اس ٹپ پہ عمل کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں باقاعدہ قرآن پاک کے ساتھ جوڑنا ہے تعلق کو. چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اس سیریز کی ٹپ پہ. پچھلا سبق جو اس سے پیچھے ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے کون سے ٹاپک کور کیے؟ پریشان حال کی پکار کون سنتا ہے؟ وہی سنے گا جو کہتے ہیں جس کو اللہ اب میں یجیب المضطر. دوسرا ہم نے دیکھا گھر میں رہا کریں، وقرن فی بیوتکن. تیسری ٹپ تھی بدلہ صرف اللہ دیتا ہے، یعنی صلے صرف اس سے مانگا کرو، کیونکہ وکان اللہ شاکرن علیمہ، دکھوں تکلیفوں کا بدلہ وہی دیتا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. پھر اگلی ٹپ لی تھی ایمان ہی زندگی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر والا جو دل ہے نا، وہ کالا دل ہے، خالی دل ہے. اس میں جیسے خالی گھر میں جنات آ جاتے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں آنے لگتی ہیں نا، یعنی ایمان سے پاک اور خالی دل میں بھی کچھ اسی قسم کی جگہیں آنے لگتی ہیں، ایسی چیزیں وہاں جگہ بنا لیتی ہیں. پھر اس کے بعد اگلا تھا شہد لیجئے لیکن چھتا نہ توڑیے. یہ صرف تبھی ہوگا جب نرم ہاتھوں سے شہد نکالیں گے، تو اس میں نرمی کی بات تھی. یقیناً ہم نے ضرور سوچا ہوگا اس کے بعد کہ کیا میرے مزاج میں سختی تو نہیں، بولنے کے انداز میں، بات کرنے کے انداز میں، اور اسی طرح سے بچوں کو نصیحت کرنے کے انداز میں. پھر اگلی تھی اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کی غذا اللہ کی یاد ہے، وہ دل سے کر لے، زبان سے کر لے، اعمال سے دکھا دیں تو وہ اللہ کی یاد ہی ہوگی. پھر اگلی ٹپ تھی کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر حسد کرتے ہیں؟ یعنی بعض لوگوں کو اللہ کے فیصلے اچھے نہیں لگتے، اور حسد جیسی بیماری میں مبتلا لوگ خوش نہیں رہیں گے، وہ غمزدہ تو ہوں گے. ایک جملہ بہت ہی پیارا سا نوٹ کیجئے گا کہ جو شخص آپ سے حسد کرے، اور اپنوں میں ہی ہوتے ہیں جو حسد کریں، غیروں کو تو پرواہ بھی نہیں، حاسد کو کوئی تحفہ تحائف ضرور دیجئے، کچھ نہ کچھ دیجئے، کوئی چائے کا ایک کپ بھی پلا دیجئے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ میں کوئی خوبی ہے. جی دیکھیں نا، اللہ کے نبی کی حدیث، کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو آپ کے اندر کوئی خوبی ہے تبھی تو لوگ آپ سے حسد کریں گے نا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو اینگل میں رکھیے. پھر اگلی چیز ہم نے دیکھی تھی، زندگی جیسی ہے ویسی ہی قبول کر لیں، ایز اٹ از. آج کی زبان میں ایز اٹ از کو کیا کہتے ہیں؟ امریکہ کینیڈا میں بھی یہ ٹرم ہے، آرگینک جوس. ऑर्गेनिक ब्रेड वो क्या होती है, नथिंग एडेड, कुछ नहीं डाला कुछ नहीं निकाला, नॉट प्रोसेस्ड, बस फ्रेश मिल्क लिया गाय भैंस से, बॉटल में भरा और आपको लाकर दे दिया। सोचिए ज़रा आप, अब ये सारा कुछ जो किया जाता है, कराया जाता है, ये सारा कुछ क्या दिखाता है आपको मुझे, कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इन सारी चीज़ों के ऊपर आपके मेरे लिए ये नज़रें लगाने के लिए चीज़ें रखी हैं, और वो क्या हैं कि आप और मैं इसको बेहतरीन तरीके से लें। फिर इसी तरह से आप देखिए ज़िंदगी को भी एज़ इट इज़ ले लीजिए, बहुत कमियां बेशियां ना करें। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि औलाद नहीं दी अल्लाह ने किसी कपल को, एज़ इट इज़ कबूल कर लीजिए। इतनी मुश्किलों में पड़ के इधर जाते उधर जाते, फिर ये तरीके अख्तियार करते फिर वो करते, फिर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसके बाद खुशी भी दे। देखिए इलाज शर्त है, कुबरी बात नहीं है। अगर इस नियत से करवाते हैं कि सेहत मिल जाए अल्लाह की रहमत से, तो इस पे भी अजर है, लेकिन नहीं मिल रहा, नई कोशिशों से हो रहा, एज इट इज़ कबूल कीजिए कि अल्लाह ने जो मेरे नसीब में रखा था मैं उसको ले लूँगी। फिर उसके बाद अगली चीज़ थी, मुसीबत जदों से हौसला पाए, और ये मशवरा तो अल्लाह के नबी का भी है कि दुनिया के मामलों में अपने से नीचे वालों को देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो। नीचे देखेंगे तो अपने हाल पे रश्क आएगा, कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सारी दुनिया से अच्छा रखा, और अगर दीन में अमल के एतबार से अपने से अच्छे लोगों को देखेंगे तो अपनी नेकियां बहुत छोटी लगेंगी कि मैंने क्या तीर मार लिया, लोग तो इससे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंसान अपनी इसलाह करता जाता है, और फिर हमने देखा था नमाज नमाज और नमाज, क्योंकि नमाज आंखों की ठंडक है, अल्लाह के नबी की भी और हमने भी इसी की ख्वाहिश और कोशिश करनी है। और फिर आखिरी टॉपिक पिछले सेशन का था, काफ़ी है अगर एक अल्लाह मेरे लिए है। सोचा जाए तो उसके बाद और ज़रूरत भी आपको किसकी है। एक विंडो को अगर दिन में 10-12 बार देखिए तो आपको आसमान के बदलते रंग, और सुबह का शाम में, और शाम का रात में, और रात का फिर आधी रात में, और आधी रात से फिर सहर के फूटने में जो रंग दिखेंगे ना, तो आप कहेंगे अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। जो इतनी बड़ी रात को धकेल कर सुबह में ढाल दे, अब मैं उसको छोड़कर किसी ऐसे के पास जाऊंगी जो बेचारे खुद कब्र की मट्टी ना हटा के बाहर आ सके, तो क्या पता चला दिल से कहिए मुझे अल्लाह काफ़ी है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। और अल्लाह ताला का ये सवाल भी है कुरान पाक में, मैं भूलूँ ना तो सूरह ज़ुमर है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है अपने बंदे को। आज हम जो टिप लेंगे उसका खूबसूरत सा टॉपिक लिख ले, टॉपिक से ही आप हैरान होंगे खुश होंगे कि ये खुशी भी की खुशी है, और वो क्या है, कुल सीरु फिल अर्दी। हमारे लिए ये एक टिप आ गई कि ज़मीन में सैर करो, घूमो फिरो, सारा यसीरु सैरन, सियाहत सैरो सियाहत, उर्दू और अरबी के ये मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, तो सैरो तफरी और घूमना फिरना और सफरो सियाहत सीने को खोलते और अनजो अलम के बादलों को दूर कर देते हैं। है इरादा कोई सैर का चले, और कुछ नहीं तो घर के बाहर ही गली में 4 चक्कर तो लगा लीजिए, क्योंकि हमारी सैरें भी बड़ी अजीब और सियाहतें भी बड़ी अजीब। अल्लाह ताला की किताब कायनात को पढ़िए जो खुली भी है, ये भी जुमला लिख लें, कुरान अल्लाह का कौल है और कायनात उसका फेल है, और उसके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं है। आप देखेंगे कि कुदरत के बहुत से कलम सफहाते वजूद पर आयाते जमाल लिख रहे हैं। इस वक्त आपने और कुछ नहीं देखना, सिर्फ इस टॉपिक पे नजरें जमाई रखें, बस स्टिल करके आप भी लिखिए, दूसरों को भी लिखने दीजिए। ये वक्त आपका मेरा इस टॉपिक को जज्ब करने का है, कुल सीरु फिल अर्दी, कह दीजिए कि सैर करो ज़मीन में, सियाहत करो ज़मीन में, क्योंकि जब तक आप और मैं कायनात पे गौर व फिक्र नहीं करते हमारा दिल नहीं खुलता। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये वक्त का ज़ियां है, फालतू बातें हैं, घरों से बाहर रहना ये कोई अच्छी बात है, नहीं, इंसान की ज़रूरत है। रोते बच्चे को भी अगर आप बाहर ले जाते हैं ना, तो उसके भी मुंह पे हल्की हल्की हवा लगती है तो वो मुस्कुराने लगता है, स्माइल देने लगता है, और ये सैरो सियाहत ही तो वो है कि जिसने दुनिया में इस्लाम फैलाया था। अल्लाह के नबी के बाद दुनिया में जो इस्लाम फैला था वो सहाबा कराम के मदीना में रहकर रोज़े की जालियों को चूमने से नहीं मिला था, ये मिला था जब उन्होंने दुनिया को घूम फिर कर देखा और खंगाला। तो आपने ये जुमला नोट किया है, इंतहाई खूबसूरत जुमला है कि कुदरत के बहुत से कलम सफहाते वजूद पर आयाते जमाल लिख रहे हैं। सूरत नाहल पढ़ लीजिए, उसमें आपको ये सारी आयतें मिल जाएंगी। जो सब्ज पहाड़ों के ऊपर सफ़ेद शीप की खूबसूरतियों की सूरत में और दरख्तों के और पत्तों के रंग बदलने की सूरत में आपको दिखती हैं। अगर वाकई अल्लाह ताला हमें हुस्न परस्त कर दे और हम बहार तो बहार खिजां के मौसम में भी बाहर जाकर देखें तो अक्ल गुम हो जाती कि इतने रंग आए तो कहाँ से आए। या आज आपके मेरे कपड़ों में जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ये 4 सीजन्स के कलर कॉम्बिनेशन हैं। आप देखेंगे कि दिलकश बागात, खूबसूरत बागीचे और बा रौनक पार्क महक रहे हैं। घर से निकलिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, पहाड़ों पर चढ़िए, वादियों में उतरिए, दरख्तों पर चढ़िए, साफ सुथरे पानी में डुबकी लगा लीजिए, यास्मीन की शाखों पर नाक रखें यानी सूंघे, तब आप पाएंगे कि रूह आज़ाद और सरशार हो गई है। जैसे परिंदा आज़ादी से फिजाओं में चहचहाता फिरता है। घर से निकलिए, आंखों से काला चश्मा हटाइए, फिर अल्लाह का जिक्र और तस्बीह करते हुए अल्लाह की ज़मीन में चलिए फिरिए। अगर आप खाली हैं और फिर भी कमरे में बंद हैं तो आप खुदकुशी के रास्ते में हैं। आपका कमरा दुनिया नहीं है, ना आप अकेले तमाम इंसान हैं, यानी सिर्फ कमरे के ना होके रह जाए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की नौजवान नस्ल ऐसी कंप्यूटर दोस्त हुई कि सारा घर सैर के लिए जाए वो कहते हैं हम घर में रहेंगे, क्योंकि उनको वो दरख्त तो वहाँ पता नहीं चल फिर के देखने पड़ते, वो स्क्रीन पे जाकर बड़े से बड़े दरख्त देख लेंगे। तो यहाँ पता क्या चल रहा है कि एक मकसद के साथ निकल रहे हैं आप, सिर्फ बाजारों और मॉल्स में नहीं घूमना। और हम निकले भी तो जाते भी ऐसी जगहों पे जहाँ और म्यूजिक और थ्रिल और आर्टिफिशियल लाइफ और रेडिएशंस और न जाने क्या कुछ नहीं। नेचर के करीब जाइए, खुली जगहों पे जाइए, फिर आलामो तफक्कुरात के सामने आप क्यों सर झुकाएं। आंखें खोलिए, कानों से सुनिए, दिल की आवाज़ पर लब्बाई कहिए कि कहा गया है तुम लोग बोझल होकर और हल्के होकर निकलो। सूरह तौबा में अल्लाह ने कहा ना, हल्के हो तो भी निकलना पड़ेगा, बोझल हो तो भी। हम निकलते भी हैं ना कभी पिकनिक के लिए, तो हल्के तो कभी नहीं गए, तो बोझल होते हैं। एक हाथ में कूलर, दूसरे हाथ में बर्तनों का बैग, तीसरे में बिरयानी का पतीला, चौथे बंदे ने ड्रिंक्स पकड़े हुए, पांचवे ने फ्रूट चाट पकड़ी हुई। मैं अक्सर सोचती और मुस्कुराती हूँ इस बात पे कि कभी चांद पे भी गए ना, तो पहला सवाल ये होगा कि खाएंगे क्या। यानी आप देखिए कि गोरों को वॉक करते और टॉक करते देखे और दुनिया में जाए, एक बर्गर छोटा सा, एक सैंडविच रोल बनाकर उन्होंने रखा होता है और एक हाथ में एक ड्रिंक होती है, दैट्स इट। हमारी तो पिकनिकें भी बोझल हो गई। दिल दिमाग पे जो चीज़ सवार होती है उसी में दिल लगता है। बहरहाल मना तो नहीं है, शर्त यह है कि फिर अपना अपना सामान खुद उठाएं। जब वो जब बड़े मर्दों को उठाना पड़े तो बेचारे फिर क्यों जाएं आपके साथ सैर करने। तो हमेशा हल्के फुल्के निकलिए, आइए नहरों तालाबों परिंदों के बीच कुरान की तिलावत करें। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पिकनिक्स में बच्चों से कुरान कंपटीशन करवाया, उनसे हदीसें सुनी। हाँ, ये अब आपका मेरा अपना टेस्ट है ना। कई लोग बैठ जाकर भी हाथों में पकड़े गैजेट से खेल रहे होते हैं, फोन सोन सब बंद करके जाइए, देखिए फिर आप कितना एंजॉय करते हैं। परिंदे जो मोहब्बत के नगमे गा रहे हैं और पानी पहाड़ों से अपने निकलने की कहानी कह रहा है। जो शख्स नफसियाती और रूहानी तौर पर बोझलपन महसूस कर रहा हो, डॉक्टर और तबीब बताते हैं कि ज़मीन में चलना फिरना और सफ़र करना इसके लिए मुसर्रत अफज़ा और सेहत बख्श है। लिहाजा आइए सफ़र करें, सादत और खुशी हासिल करें, सोचें और तदब्बुर करें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग आसमान और ज़मीन की बनावट में गौर करते हैं और पुकार उठते हैं, हमारे रब तूने इस कायनात को यूं ही नहीं पैदा किया, तो क्या पता चला। कुल सीरू फिल अर्दी, चलिए सैर करते हैं ज़मीन की। देखिए अल्लाह का हुक्म है सीरू या सीरू सारा, और कुल भी हुक्म है, तो सैर करना भी अल्लाह के हुक्म को मानना है, तो इस पे भी अजर मिलेगा। कायनात की हर चीज़ उसकी तस्बीह करती है, आप भी कीजिए। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की तस्बीह के साथ सैर कीजिए, दिल की कसावटें दूर होंगी। बड़ा दिल पे कभी बोझ हो ना, देखिए कभी गम का बोझ होता है, कभी किसी की बात का बोझ होता है, कभी कोई हालात का बोझ होता है, वाकयात कोई ऐसे हो जाते हैं, खुली जगह पे निकल जाए, ओपन एयर में चले जाए, कहीं नहीं जा सकते, दरवाज़ा खोलकर खुली छत के नीचे बैठ जाइए। वो नीली छत है कि वो सुरमई हो गई कि काली हो गई, अकेले में बैठ जाइए थोड़ी देर ओपन एयर में, घर के बैकयार्ड में बैठ जाएं, छत पे बैठ जाइए, और फिर उस नमाज को जो आप इंजॉय करते हैं, वो कहते हैं ना उठते हैं हिजाब आखिर करते हैं कलाम आखिर, پھر اسی طرح دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابِ کائنات پہ غور کرنے سے رنج دور ہوتا ہے. پہاڑ ہوں، وادیاں ہوں، درخت ہوں، چشمے ہوں، پرندے ہوں، کھلی فضا ہو، اور کیا چاہیے؟ کس کے نفس پہ بوجھ رہے گا، کس کی روح بوجھل رہے گی؟ سب ڈپریشن دور ہو جاتے ہیں. اور آج ڈاکٹرز کہتے ہیں، لیکن وہ بیچارے جو ایسے سفر پہ بھی نکل جاتے ہیں نا، تو ساتھ ہی گیجٹوں میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں کہ دوبارہ پھر وہی بات ہے کہ وہ باہر کی دنیا کی بجائے اندر کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں. تو کائنات پہ غور و فکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورت آل عمران میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ آپ کو مجھے اولو الالباب میں شامل کر دے. اور کائنات تو ہمیشہ ہی خوبصورت رہی. آپ پاکستان سے نکل کر امریکہ تک آ جائیے، آسٹریلیا کی طرف گھوم جائیے، آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں، ہر طرف آپ کو ایک پیغام ملے گا. کیا؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مار کا بیم و رجا دیکھ، یعنی امید ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینۂ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. تو باہر نکلیں تو پورے نیچر کو آبزرو کرنے والے دیکھیں. ہاں وہاں بھی بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر بھی بچوں کو ڈانٹ ہی رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. کوئی چھوٹی سی واک ٹاک بنا لیجئے، ویکینڈ پہ چلیے، جو ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں ساتھی وہ تو مل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے آپ کے طبیعت کا بوجھ دور ہوگا. اگلی ٹپ لیجئے، صبر جمیل اختیار کریں. صبر جمیل کیا؟ خوبصورت صبر، بیوٹیفل پیشنٹ. الصبر لا شک و تفیخہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا تصور آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا تصور آتا ہے اس لفظ کو سن کر. ایسا صبر کہ جس میں بندہ اور خوبصورت ہو جائے، ایسا صبر کہ اندر پتہ ہی نہیں کہ آگ لگی ہوئی اور باہر سے آپ اسمائل دے رہے ہیں لوگوں کو. یعنی الصبر، کون سا صبر جمیل؟ لا شک و تفیخہ. ہے مشکل، یہ تو مانیے، لیکن نا چیز ہو گرم اور باہر سے ٹھنڈی لگے بڑا مشکل ہے. ہنڈیا کھولتی بھی اندر سے، چولہا بند کر دیا، باہر بڑی دیر تک ہنڈیا گرم رہتی ہے. تو یہی تو صفت ہے، اسی لیے تو اس کو جمیل کہا گیا. تو صبر و تحمل اولو العزم لوگوں کی صفت ہے. یہ لوگ کشادہ ظرفی، قوت ارادی اور غیرت و خودداری کے ذریعے آفات و مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اور اگر ہم یا آپ صبر نہ کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہے کچھ اور آپ کے میرے اختیار میں؟ کیا صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہے؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ راہ ہے؟ ایک بڑے آدمی کا قصہ ہے کہ وہ مصائب کی اماجگاہ میں، یعنی بہت سارے دکھوں میں تھا، اور المی اور حادثات کی فرودگاہ بنا ہوا تھا. یعنی ایک شخص بہت ہی دکھی تھا، بڑے پریشان حالات میں تھا، لیکن اس نے صبر و توکل علی اللہ کی ڈھال اختیار کیے رکھی. بڑوں اور شرفا کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ بلاؤں اور تکلیف کا مقابلہ کرتے اور حادثات کو دھول چٹا دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری میں لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو نہ بلا لیں، یعنی ڈاکٹر کو نہ کال کر دیں؟ فرمائے، طبیب تو دیکھ چکا ہے. کہنے لگے، اس نے کیا کہا؟ فرمایا، اس نے کہا ہے، فاعل لما یرید، میں جو چاہوں کروں گا. یہ طبیب کون تھا؟ ابو بکر کا علاج کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ تھا، الحکیم تھا. صبر اللہ کے واسطے ہونا چاہیے. صبر ایسا ہو کہ خلاصی کا یقین ہو، حسن انجام کی توقع ہو، اجر کی طلب ہو، یہ نیت ہو کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے. صبر کریں خواہ کیسی ہی شدید مشقتیں لاحق ہوں، چاہے سب راستے تاریک ہو جائیں. صبر ہوگا تو نصرت آئے گی کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے. دنیا کے بہت سے مشاہیر یعنی مشہور لوگوں کے حالات پڑھ کر دیکھیے، ان کی شدت صبر اور قوت برداشت دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے. مشکلات ان پر ایسی آتی تھیں جیسے سر پر اولے پڑ رہے ہوں، لیکن وہ صبر و عزیمت سے حق کی راہ میں جمے رہے. पहाड़ों की तरह साबित कदम रहे। चुनौती कुछ ही मुद्दत बाद इनके सामने नई सुबह रोशन थी, फतह मिल गई, नुसरत आ गई, और इन लोगों ने सिर्फ सब्र ही नहीं किया बल्कि हादसात का मुकाबला किया और मसाइब को चैलेंज दिया। क्या आपके मेरे ऊपर भी कोई ऐसी मुश्किलें आई हैं? कभी बहुत भी आए ना तो सोचा करें, अभी मेरे घर वालों ने मुझे कुएं में तो नहीं फेंका, अभी मेरे कत्ल के मंसूबे तो नहीं बनाए गए। आप देखेंगे कि अंबिया कराम की ज़िंदगी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि नुक्ता होता है गौर व फिक्र का, कि अगर उनकी ज़िंदगी में जो सदमे और गम आए तो उन्होंने सब्र कर लिया, तो मैं आप तो फिर उससे पीछे हैं। ऐसा ही एक शख्स तारीख में उसका वाक्य आता है, अब्दुल्ला बिन मुबारक के बारे में आता है कि उनको सहरा में जब वो बिछड़ गए तो समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं, और दूर से कोठरी की तरफ नज़र पड़ी, देखा तो रोशनी थी, कहा इधर ही चलता हूँ। अभी बाहर ही थे तो आवाज़ें आ रही हैं, कोई कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लसी आफानी मिम्म अब्तिला कभी वफद्दलनी अला कसीरम मिम्मन खलक तफदीला, कि ए अल्लाह सारी तारीफें तेरी हैं कि जिसने मुझे सारी मखलूक से ज़्यादा दिया, मुझे तो सबसे ही अच्छा रखा। नॉक किया, अंदर से इजाज़त मिली आ जाइए। जब अंदर गए तो देखा कि कोई बुज़ुर्ग हैं, जिस्म का कोई यूज़ उनका सलामत नहीं है और सिर्फ ज़ुबान है और आधा धड़ है, और ज़ुबान पे यही बात है कि अल्लाह तूने तो मुझे अपनी मखलूक में से सबसे अच्छा रखा। सलाम दुआ के बाद कहा कि बाबा जी आप किस चीज़ पे शुक्र अदा कर रहे हैं, मुझे तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा। कहने लगे कितने ही लोग आज भी कुफर पे नहीं हैं, अल्लाह ने मुझे इस्लाम दिया तो क्या अल्लाह ने मुझे दूसरों से ज़्यादा अच्छा नहीं किया? कितने ही लोग हैं जिनको अल्लाह ने सारा जिस्म दिया लेकिन उसको गुनाहों में डाल रहे हैं, तो मैं तो फिर भी अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ। कहा शुक्र किस बात का, कहा इस ज़ुबान का जो भी चल रही है। कहा आपकी कहानी क्या हुई? सुनाने लगे मेरा बेटा भी था, बहू भी थी, बच्चे भी थे, कोई ऐसी आफत आई कि सब खत्म हो गए, मेरा अपना जिस्म आधा रह गया, सिर्फ मैं और मेरा एक पोता 7-8 साल का, ये ज़िंदा रह गए। कहा अच्छा बाबा जी वो पोता किधर है? कहा बस सारा दिन बाहर जाता है, कुछ चीज़ें मेहनत मजदूरी करके लाता है तो वो मैं और वो खा लेते हैं। लेकिन ये बताओ कि तुम मुझे ये बातें क्यों पूछ रहे हो? खैर बातचीत हुई, बाबा जी ने कहा कि मेरा एक काम कर दोगे? कल से वो मेरा बच्चा घर नहीं आया, यानी जो पोता था, और मैं उसके लिए परेशान हूँ, तुम ज़रा उसको जाकर ढूंढते हो। इन्होंने कहा ठीक है। अब बाहर निकलते हैं, सहरा है चारों तरफ, एक बिल्कुल मौत का सालम होता है, दूर से इनको गिद्ध दिखे, वॉल्चर्स, और वो जो लाशों को मैयतों को खाते, ना चाहते हुए भी उसी तरफ पाँव लग गए। वहाँ जाकर देखा तो करीब से तो बिल्कुल उसी उम्र के एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है और गिद्ध उसको खा रहे हैं, जो उम्र उन्होंने अपने पोते की बताई थी। समझ गए सारी कहानी कि बच्चा कुछ जानवरों की खुराक बन गया। अब क्या करें, हौसला नहीं पा रहे कि कैसे जाकर उस बुज़ुर्ग को उनके उस इकलौते पोते की खबर दे दूं जिसके ऊपर उनकी नज़रें थीं, लेकिन चूंकि वादा करके आए थे पहले सोचा कि वापस ही नहीं जाता। खैर वापस गए, अभी इनके कदमों की आहट थी कि वो बुज़ुर्ग उम्मीद से बोले आ गया मेरा पोता। अंदर आकर कहते हैं बाबा जी मेरी चंद सवालों का जवाब दें फिर बताता हूँ। पूछा क्या बोलो? कहा ये बताएं कि अल्लाह ताला को आपसे ज़्यादा प्यार है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से? कहा ऑफ कोर्स हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से। दो चार अम्बिया कराम के नाम पूछे और वो बुज़ुर्ग जो माशाल्लाह तौहीद में रचे बसे थे हर बात के जवाब में कहने लगे कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह को अपने नबियों से मुझसे ज़्यादा प्यार है। तो कहा फिर उस रब ने जिसने याकूब को आजमाया, अय्यूब को आजमाया, उसी रब ने आपको आजमा लिया, आपका पोता अब दुनिया में नहीं रहा। बस इस बात का सुनना था कि उस बुज़ुर्ग के मुंह से एक चीख निकली और उनकी रूह परवाज़ कर गई। इन्होंने उनको नहलाया धुलाया कफनाया और उसके बाद फिर कब्र में डाल दिया। तफसीर की किताबों में ये वाक़ आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। उसी रात ख्वाब में उस बुज़ुर्ग को देखा, बड़े अच्छे हाल में, बहुत चमक दमक और इत्मीनान और ख़ुशी। तो पूछा बाबा जी आप वही हैं जिनका थोड़े देर पहले इंतकाल हुआ और आपका तो जिस्म भी सलामत नहीं था? कहा मैं वही हूँ। कहा ये सारे हालात कैसे बदल गए, आपके ये हाल कैसे बदल गया? तो उन्होंने सूरत रात की आयत पढ़ी, इसी तरह की और भी आयतें हैं कुरान पाक में कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारे सब्र का बदला दिया। तो याद रखिएगा, मुंह बसोरना, चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, हर वक्त बुरी बातें करना, कमज़ोर बातें करना, ये बहुत आम हो गया। अब आपने मैंने वो सब्र करने हैं कि जिसमें पास बैठे को ना पता चले कि अंदर का टेम्परेचर क्या है। तो सब्र जमील इख्तियार कैसे किया जाए, आइए ज़रा देखते हैं। पहली बात है कि मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत पाइए, खुलासी का यकीन हो कि आखिर ये मुश्किल टल जाएगी, हसीन इंजाम की तवक्को रखिए। इल्ज़ाम लगा, सब्र जमील किया, इल्ज़ाम धुल गया। ये थी हमारी आपकी माँ अम्मा आयशा की कहानी। प्यारा बेटा बिछड़ गया, सब्र जमील किया, तो बेटा क्या बेटे वापस मिल गए। ये थे हज़रत याकूब की कहानी। और शदीद मुश्किलात में सब्र और अल्लाह की याद, ये नसीब होती है अल्लाह के चुने हुए बंदों को। तो सब्र जमील इख्तियार करना है। हमारा सब्र भी बदसूरत ही होता है, रो धो के जब आवाज़ भी रुंध जाए, चीखो पुकार की भी हिम्मत ना, फिर कहते हैं मैं सब्र करती हूँ। नहीं, इन सब्रु इन दसद मत लूला। एक खातून जो एक कब्र पे बैठी रो रही थी, बैन कर रही थी, तो अल्लाह के नबी ने कहा सब्र कर इसबरी, वो आपको पहचानी ना, कुछ गुस्ताखाना लफ्ज़ बोल गई। हाँ जी, जो मुझ पे जो गम पड़े अगर आप पे पड़े तो आपको पता चले। खैर, बाद में लोगों ने बताया कि तूने अल्लाह के नबी को क्या बोल दिया, ऐसे तो नहीं बोलते। कहने लगी अल्लाह के नबी थे। खैर, वापस गई अल्लाह के नबी को ढूंढती हुई जाके, कहा अल्लाह के नबी अब मैं सब्र करूँगी। तो आपने उसको ही ये कहा कि सब्र तो वही है जो सदमे की चोट पड़ते हुए मिले। ये सही बुखारी की रिवायत 1283 थी। तो याद रखिए, ये सब्र कैसे आएगा, जब आप रिहर्सल कर चुके हों, जब आप जहनी तौर पे उस सदमे के लिए तैयार हो चुके हों। तो है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन कहने लगी हूँ बड़ा सोचते हुए, हर सदमे के लिए तैयार रहिए। प्यारों का साथ बिछड़ जाए, घर ख़त्म हो जाए, चीज़ें सब बनी बनाई ख़त्म हो जाएं, तैयार रहिए, ताकि अल्लाह न करे इसमें से कोई एक भी चीज़ आए, लेकिन अगर आ गई तो उस वक्त फिर प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी हो। हम पहले तैयार नहीं होते, और जब ऐसी कोई तकलीफ़ आती है तो फिर कभी बेहोश और कभी गमज़दा, आपका कुछ भी नहीं कोई लेकर जाएगा। ये दुनिया बनी ही फना होने के लिए। फिर इसी तरह देखिए कि सब्र जमील क्या है, कि उसर के साथ युसर का यकीन रखिए। रोना मना नहीं, अल्लाह के नबी भी रोए बेटे की वफ़ात पे। अल्लाह ताला की नाशुक्री के कलेमात मुँह से ना निकालिए, क्योंकि ये सब्र जमील के मुनाफी है। हम हर चीज़ में हुसन चाहते हैं ना, लेकिन तकलीफ़ों और दुखों में हुसन क्यों नहीं रहता? कैसी बुरी बुरी हरकतें करते, शक्लें बिगाड़ते हैं, बाद में अफसोस भी होता होगा कि कैसे लोगों के सामने रोई थी, चीखी थी, कपड़े फाड़े थे। तो ऐसा ना कीजिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि अबू बकर सिद्दीक आखिरी वक्त और कह रहे हैं फ़ालु लिमा युरीद, दिखा लिए तबीब को, मतलब ये था कि अब बस मेरे दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। और मुसनद अहमद की रिवायत है इस टिप के साथ 9352, आपने फरमाया मुझे मोमिन के मामले पर ताज्जुब है, बेशक इसका सारे का सारा मामला खैर पर है, और ये चीज़ सिर्फ मोमिन को ही हासिल होती है। और इसकी तफसील ये है कि जब इसको खुशी मिलती है और वो शुक्र अदा करता है, तो इसमें भी इसके लिए बेहतरी है, और अगर इसको कोई तकलीफ़ लाहक होती है और वो सब्र करता है, तो इसमें भी इसके लिए बेहतरी है। आजबुल अमरुल मोमिन, खुशियों में शुक्र, गमों में सब्र। तो क्या पता चला कि सब्र चोट पड़ते ही क्या सीखा, मुसीबत पड़ते ही सब्र किया जाए। सब्र जमील और सब्र महज में फ़र्क है। हमने सब्र जमील इख्तियार करना है। आप सोच रहे होंगे सब्र जमील तो समझ लिए, ये सब्र महज क्या है? वही बात कि जब और कोई चारा ना, रो लिया, धो लिया, चीख पुकार कर ली, ना शुक्रिया कर ली, अल्लाह के ख़िलाफ़ भी बोल दिए, फिर कहते हैं हम सब्र करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। इसी तरह जब जहनी रो बहके तो सैर पर निकल जाइए, फितरत के हसीन नज़ारों पर ध्यान लगाइए, तो गम दूर होगा और अल्लाह ताला की कायनात पे गौर व फिक्र करना है। अल्लाह ताला हमें खूबसूरत तरीके से हर काम को करने की तौफीक अता फरमाए। अगली टिप लीजिए, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। बड़ा मारूफ मुहावरा है, उर्दू ज़ुबान जानने वाले इससे जानते हैं। ये किन के लिए है, ये कौन होते हैं, ये आप और मैं हैं कि नहीं, आइए ज़रा सा इसको भी समझ लें और अपना मुहासबा तो करके देखें कि हम दूसरों की कितनी तड़प रखते हैं उनके मामले में। कुछ लोग होते हैं जिनके जहन में बिस्तर पर सोते हुए आलमी जंग होती रहती है, यानी बस बिस्तर पर लेटे हुए बड़ी बड़ी जंगें भी जीत के आ जाते हैं, ख्वाबों में रहने वाले। जंग के नतीजे में इनके मैदे में ज़ख्म पैदा हो जाता है, इन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर के आज़ार लाहक हो जाते हैं, वाक़यात से वो झुलसते रहते हैं, कीमतों में बढ़ोतरी हुई इन्हें गुस्सा आया, बारिश न हुई वो धाड़ने लगे, करेंसी की कीमत में कमी आई और वो मुस्तरब हो गए। इसी तरह वो मुस्तकिल हुज्नो मलाल और कुलक की हालत में रहते हैं, जैसे फरमाया हर आवाज़ को अपने ही खिलाफ समझते हैं। मेरा मशवरा यह है कि सारे जहां का दर्द लेकर मत फिरिए, हादसात ज़मीन पर हों आपकी आंतों में ना हों। बस लोगों का दिल गोया स्पंज होता है, फोम, जो हर किस्म की अफवाहों और गप बाजियों को पीता रहता है। छोटी बातों पर परेशान, मामूली बातों पर दिल बाहर निकला जाता है, हर बात पर मुस्तरब। ऐसा दिल जिसका होता है इसकी शख्सियत मुनहदिम हो जाती है, यानी गिर जाती है, और वजूद खतरे में पड़ जाता है। अहले हक की कैफियत ये होती है कि इबरतें और नसीहतें इनके ईमान में इजाफा करती हैं, थोड़े दिलों के खौफ में जलजलों से ज्यादा इजाफा हो जाता है। हादसात और ट्रेजडीज के सामने तो एक शुजात दिल ही ठहर सकता है, यानी बहादुर। बहादुर और इकदाम करने वाला ही खतरात से खेलता है। इसका सीना चौड़ा, ज़र्फ़ बड़ा, यकीन रासिख, आसाब ठंडे होते हैं और इन्हें इन शराह सदर हासिल होता है, यानी सीना खुलता है इनका। जहाँ तक बुजदिल की बात है तो वो बेचारा तवक्कुआत, अफवाहों और ख्वाबो ख्याल की तलवार से रोज़ाना बार बार कत्ल होता है। लिहाजा अगर आप ज़िंदगी में इस्तकरार चाहते हैं, यानी कंटिन्यूटी, सुकून, ठहराव, तो हालात का शुजात और पामर्दी से मुकाबला करें, ताकि जो अहले यकीन नहीं वो आपको बेवजन न समझें और इनकी चालों से आप तंगी में ना पड़ें। हादसात से मजबूत तर बने, बहरानों की, आंधियों और तूफानों के झकड़ों से ज़्यादा सख्त साबित हों। कमज़ोर और थोड़े दिले लोग काबिले रहम हैं कि गर्दिश याम इन्हें कितना हला मारती है। आप इन्हें ज़िंदगी का बहुत ही हरीस पाएंगे। कुरान कहता है उन लोगों के बारे में जिनका गुमान है कि दुनिया से जाते ही हमें सब कुछ मिलने वाला है। जो गैरतमंद और खुददार हैं वो अल्लाह की तरफ से मदद और नुसरत के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ने इन पर सकीनत नाजिल की है। तो क्या सीखा हमने कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में रखने वाले लोग कामयाब नहीं होते। ये प्रैक्टिकल नहीं होते, ये लॉस्ट होते हैं, ये इधर उधर बिखरे रहते हैं। आप उसकी भी मदद करना चाहते हैं, उसकी भी करते हैं, उसकी भी करते हैं, अपनी भी तो करिए, अपने घर वालों का भी तो ख्याल रखिए। और आप देखिए ऐसे लोग हौलते रहते हैं। असल में ये किरदार है, लोग इसको अच्छा किरदार कहते हैं। अगर एक ख़ास हद तक दूसरों का दर्द दिल में हो कि उनके लिए कुछ करना है या उनके दर्द की दवा लेनी है तो ये अच्छी होती है चीज़। लेकिन हर चीज़ में पड़ना, हर चीज़ में कूदना, हर चीज़ में, जैसे वो कहते हैं कि सांस हैं तो चमचा हाथ से नहीं छोड़ना, उठाई जा नहीं रही चाबियां लेकिन चाबियों का गुच्छा जो है वो अपने अपने ही हाथ में रखना है। और इसी तरह खबरें पढ़ पढ़ कर सियासतदानों और गुलकारों और अदाकारों पर कमेंट्स देना आप ये नहीं कर सकेंगे। फोकस्ड हो जाइए। ऐसे लोगों को हर वक्त झुंझलाहट होने लगती है, कोई बाहर आवाज़ आई अपने खिलाफ समझेंगे, सिर्फ मुनाफिकून के आचार में ही आता है। फिर आप देखिए मामूली से मामूली मामलात में मुस्तरब हो जाते हैं। ख़ानदान में कहीं किसी की बेटी बेटे में कुछ हुआ, ये फ़ोन पे शुरू हो गए, मशवरे ये देने वाले, तनकीद ये करने वाले, राय देने वाले। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन अपने काम से काम रखता है, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। बस मिन हुस्न इस्लामी तर्कुहु मा ला यानी, इस हदीस को इसके साथ कोट कर लीजिए, मिन हुस्न इस्लामी तर्कुहु मा ला यानी। आदमी के इस्लाम का हुसन यह है कि हर बेकार चीज़, यानी जिससे आपका कोई मामला नहीं, उसको छोड़ दे। फिर आप देखिए कि कमज़ोर दिल लोग जो आजकल तो सिर्फ एक दिन की अखबार पढ़ लें तो कई दफ़ा उनका दिल टूट जाएगा, कहाँ क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। और ख़ास तौर पर आजकल के हालात, कोरोना से ज़्यादा इसका खौफ खतरनाक है। तो मामूली सी खुशी पर दिल उछल कर बाहर आ रहे हैं, छोटी सी खुशी के आ गई घर में, बच्चों में हाय हुर्रा लुड्डी और न जाने क्या शोरोगुल के हमसाए भी ना सो सकें रात भर। फिर अफवाहों पे कान रखते हैं ऐसे लोग। तो लिहाजा आपने मैंने अपने आप को इतना मसरूफ़ और इतना फोकस्ड करना है जैसे ट्रेन है। आप देखिए ट्रेन के रास्ते में कितने सीन आते हैं ना, लेकिन वो रुकती है कहीं? नहीं रुकती, वो चलती ही जाती है। तो लिहाजा कोरोना की अमवात से हौलते रहने की बजाय मरीजों की शिफा याबी की कोशिश कीजिए, हेल्थ वर्कर्स की सलामती की दुआएं कीजिए, और इसी तरह जो चले गए फौत हो गए उनकी बख्शिश की दुआ कीजिए। और जहां कोई खबर हुई झूठी सच्ची उसको सुनकर मानने से पहले सूरह हुजरात की आयत 6 याद कर लीजिए कि ईमान वालो अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो। हर वक्त लोग कहते हैं उस मुल्क में हो गया, ये हो गया, यानी बात फिर भड़ पहुंच जाती है, झूठी खबरें ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे लोगों के दिल अफवाहों के घर बने होते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बायस इबरत हों मगर अपने आप को पहले से मजबूत करें ताकि हादसाती तकलीफ़ों से बच सकें और खुशियों में दिलों को काबू में रखिए, असाब को ठंडा रखें। ये कोई पहली दफ़ा खुशी नहीं आई, और एक जुमला जो हमारे खुशियाँ मनाने के अंदाज से बहुत मैच करता है, कुछ लोगों का रवैया क्या है कि क्या हम खुशी में नहीं अल्लाह को नाराज़ करेंगे तो और कब करेंगे। यानी सबको खुश करके भेजना चाहते हैं खुशी वाले घर से सिवाय अल्लाह और उसके रसूल को। सबको बुला लेंगे लेकिन फरिश्तों को नहीं बुलाएंगे जो रहमतों की दुआएं करने वाले होंगे। खुशियां हमारी अगर ऐसी हो जाएं तो क्या अल्लाह को फिर आज ही नहीं आता। और आपको मुझे हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, अल्लाह ने आपके लिए बहुत रखा होता है कि बस दफ़ा अल्लाह ताला हमें फूलों से भरा हुआ टोकरा देना चाहते हैं और हम एक फूल की ज़िद लगा के बैठे होते हैं। अल्लाह ताला से खैर मांगिए, असल मांगिए। जब सूरज गुरूब होने लगता है ना तो छोटे छोटे इंसानों के साए भी बड़े बड़े हो जाते हैं। ये दुआ कीजिए कि आपके मेरे पीछे जो शेडोज़ जाएं, जो सदका जारिया छुटे वो लंबा हो, आपकी ज़िंदगी में जो हो गया सो हो गया,